आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई जनप्रतिनिधियों ने जनहानि पर जताया शोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रदेश भर में एकता यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य कराएंगे वंदे मातरम का गायन। लोकनायक बिरसा मुंडा के सम्मान में लखनऊ में 13 से 18 नवंबर तक होगा जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में आंशिक रूप से शीतलहर चलने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कल शाम हुए धमाके के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। काशी के विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में श्री राम मंदिर, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई जनप्रतिनिधियों ने विस्फोट में हुई जनहानि पर दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति, शोकाकुल परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। विस्फोट कल शाम 6:55 पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। मरने वालों में प्रदेश के अमरोहा जिले का एक व्यक्ति और घायलों में देवरिया जिले का एक व्यक्ति शामिल है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम DGP राजीव कृष्ण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सभी जिलों में सघन चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। श्री योगी ने अधिकारियों को फील्ड में रहने और संवेदनशील भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, सार्वजनिक आयोजनों और धार्मिक स्थलों का स्वयं निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कल गोरखपुर में प्रदेश भर के लिए एकता यात्रा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। करीब 2 किलोमीटर की एकता यात्रा में मुख्यमंत्री स्वयं शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा का स्वर बताते हुए कहा कि ये गीत केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि हमारी आत्मा का स्वर है। इसका गायन हर शिक्षण संस्थान और स्कूल में अनिवार्य किया जाएगा। श्री योगी ने कहा कि सरदार पटेल भारत के साहस, एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के विचारों के केंद्र में थे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, मत या मजहब राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता।
श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ हम सब यहाँ पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्र गीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके।
इसी क्रम में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में पदयात्रा और वंदे मातरम के सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फरीदाबाद से 350 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने पर कल लखनऊ में कहा कि राष्ट्र के दुश्मन भारत में कहीं भी हो, उन्हें हमारी सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ निकालती हैं। उन्होंने कहा कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और जल्दी ही आतंकवाद से भी मुक्त हो जाएगा।
जो देश के दुश्मन कहीं पर भी किसी भी भेष में छुपते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको खोज निकालती हैं और यह भी एक बड़ी सफलता है। मैं तो सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देता हूं और देश के दुश्मनों को सावधान करता हूं, वो किसी भी भेष में आएंगे, किसी भी क्षेत्र में आएंगे। देश की जनता भी एक सैनिक की तरह हर समय सजग है और देश के सैनिक और देश के सुरक्षा एजेंसियां वह तो सजग हैं ही। बहुत बड़ी घटना को जो अंजाम देने वाले थे उससे देश को बचाने का काम किया है, उनका अभिनंदन है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकनायक बिरसा मुंडा के सम्मान में प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय गौरव पखवाड़ा और जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी कल लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसी क्रम में 1 से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान जनजातीय विकास के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन 13 नवम्बर से 18 नवम्बर तक किया जाएगा।
लखनऊ में जनजाति गौरव दिवस के पूरी अवसर पर हम लोग 13 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक का कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव के रूप में 6 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजित करने का काम करते जा रहे हैं। इसमें 15 नवंबर को कार्यक्रम में यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी रहने वाले हैं और इसी का एक माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो जनजाति माहौल जिला है तो हम लोगों का प्राकृतिक और अन्य चीजों से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है वहाँ के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को रहने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर को अयोध्या में प्रस्तावित आगमन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि समिति की कल अयोध्या में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अयोध्या के राम मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे और प्रथम तल पर स्थापित भगवान श्री राम के परिवार की प्रतिमाओं का दर्शन करेंगे। श्री मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मंदिर परिसर के 7 शिखरों पर ध्वज फहराएंगे। ये कार्यक्रम लगभग 3 घंटे का होगा।
जिला प्रशासन राम विभाग के कार्यक्रमों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है और कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाएगा और लगभग अंतिम किया जा चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगभग 3 घंटे का हो और किसी प्रकार से जो राम विभाग के कार्यक्रम होते हैं जो अपराह्न में संभवतः होंगे उन पर कोई बाधा नहीं है।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में GST दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज की कड़ी में जानकारी अगली पीढ़ी के GST सुधारों से स्टेशनरी क्षेत्र को मिलने वाले बढ़ावे पर।
नए GST सुधारों के तहत देश भर के छात्रों और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ है। पेंसिल, रबड़, शार्पनर, क्रेयोन, नोटबुक, ग्राफ बुक और मानचित्र जैसी स्टेशनरी वस्तुओं पर कर की दर पहले के 12% से घटाकर 0 कर दी गई है। इसी प्रकार रबड़ पर GST की दरों को पहले के 5% से घटाकर कर मुक्त कर दिया गया है। दृष्टि पुन्यानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह के दौरान रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से औसतन 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे बने रहने और कहीं कहीं 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाने की संभावना व्यक्त की है। इसके चलते आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान देर रात और सुबह आंशिक रूप से शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान प्रदेश में दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे बने रहने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई जन प्रतिनिधियों ने जनहानि पर जताया शोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रदेश भर में एकता यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य कराएंगे वंदे मातरम का गायन। लोकनायक बिरसा मुंडा के सम्मान में लखनऊ में 13 से 18 नवंबर तक होगा जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में आंशिक रूप से शीत लहर चलने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।